जन्म की आ रहे, ज्वान की जितने ज्यादा लग रहे और ज्वान की जितने आ रहे ज्यादा, वो बड़ो साधन जी क्राइटेरिया है। तो सब सब देखता रहता हूँ और एनालाइज करता रहता हूँ सारी चीजें। नहीं देखिए आप बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा सर, दूसरे पे कोई पे कमेंट भी नहीं कर रहा हूँ कि कोई ऐसा क्यों कर रहा है नहीं, पर मेरे अंदर लगने लगता है कि अरे कितना फ्रॉड कर रहे हैं हम अपने साथ ही, क्या ये क्राइटेरिया बनाना चाहिए। हमने तो वहाँ आचार्य श्री के सामने बोल दिया, सबको थोड़ा सा बुरा लग गया था। जबलपुर में एक व्यक्ति बड़े शौक से कहना अरे आचार्य श्री के उसमें 40,000 की पब्लिक आई सुन भी प्रवचन, हमने कि इसे आचार्य श्री बड़े हो गए, हमारे आचार्य श्री वैसे ही बड़े हैं, चाहे 40,000 आते चाहे नहीं आते, अगर यही तुम्हारा क्राइटेरिया तो 4 दिन पहले राजीव गांधी आए थे तो 2,00,000 आदमी आते, भी हमारा आचार्य श्री से बड़े नहीं है। तो वो बिल्कुल चौंक गए थे वो, और वही आचार्य श्री थे चुप रह गए। हाँ ठीक, इस आना बहुत अच्छी चीज की, देखो लोग कितने लोग रुचि ले रहे हैं ये कहना अलग है, लेकिन उसको क्राइटेरिया बना लेना, क्राइटेरिया नहीं बनाना चाहिए इन चीजों। इसी तरह अपने छोड़े हुए द्रव्यों को क्राइटेरिया अपने बड़े होने का नहीं बनाना चाहिए।
कितना छोड़ा
ये क्राइटेरिया नहीं है, क्राइटेरिया ये है कि आपके भीतर कितनी पवित्रता आई, कितनी निर्मलता आई, वो क्राइटेरिया। अरे ये भाई बहुत सज्जन है,
अहंकार हो जाएगा।
अपन किसको कहते कि भैया ये बहुत सज्जन है, किस बात से कहते? उनके परिणामों की निर्मलता से सज्जन कहते, पैसा बारे हैं सो पैसा देख के कहते, मन उनको सज्जन को नहीं कहते, भैया जी बहुत पैसा वाले हैं। हाँ ठीक है, पैसा वाले तो कोई भी हो सकता, मानो भैया बहुत सज्जन है, सज्जन है मतलब। और फिर जब उनके पास पैसा भी हो गए तो दो बातें एक साथ कहते, अरे भैया बहुत पैसा है मानो सज्जन आदमी है, मतलब पैसा के साथ सज्जनता और दुर्लभ। तो कुल क्राइटेरिया क्या हुआ? सज्जनता। ठीक इसी तरह इस मोक्ष मार्ग में क्या है? परिणामों की निर्मलता, वो हमारा क्राइटेरिया है, किसी का भी हो। साधु का क्राइटेरिया भी वही है और श्रावक का क्राइटेरिया भी वही।
लेकिन जब हम ये देखते हैं कि कहीं कहीं त्याग की सभाओं में या त्यागियों की सभाओं में पैसे को बहुत उभार या पैसे वालों का सम्मान होता है, तो फिर द्वंद्वात्मक स्थिति पैदा
होती
है। हमारे मन में ये आता है कि त्याग की महिमा है कि अभी
उतने भी त्याग की महिमा है अगर देखें
तो उन्हें
मैं 11,00,000 की बोली ली है तो पैसा की वजह से नहीं, 11,00,000 हते ये से नहीं, 11,00,000 दाई ये से हते, तो भाई तो बहुत लोगों के पास है 11,00,000। हाँ लेकिन उसने साहस, इसलिए उन क्षणों में सम्मान करते हैं, पर वो सम्मान को अपने पैसे के अहंकार में और दूसरे ढंग से ले लेता, ये उसकी कमी है। या श्रावकों भी उस समय यही विचार करना चाहिए कि जो पैसे वाले नहीं है, पैसे वाले तो और हैं, मनो जी पैसे के त्यागी हैं, देखो इनने इतने पैसे दे दिए।
ऐसे लोगों से कई बार मिला, बाकी मैं अहंकार नहीं रहता उनमें, कई श्रद्धा और आस्था है।
अगर स्वेच्छा से किया
फल है, परिणाम उसका फल
उन्होंने त्याग दिया वही तो
ऐसे का परिणाम मिलता है,
जितना उन्होंने त्याग दिया वही तो उनका हो गया।
अपन थोड़ा सा आगे बढ़े, देव पूजा गुरु पास थी, शास्त्र स्वाध्याय, ये तीन बातें अपनी कल हो गई थी। शास्त्र स्वाध्याय के बारे में भी कल चर्चा ये हुई थी, कल आप नहीं थे। वाचना गुरु को मुख से चाहे एक लाइन सुनो, लेकिन शुरुआत वहीं से होनी चाहिए। गुरु मुख से जो उपदेश ग्रहण किया जाता है उसे वाचना कहते हैं। वाचना भी बहुत प्रकार की होती, भद्रा वाचना, दया वाचना।
पढ़ने को
नहीं कहा, अब क्यों नहीं कहा, हम तो अभी चिंतन नहीं किया इस पर, क्योंकि पढ़ेंगे तो बाद में, पहले जो है उपदेश से ग्रहण, क्योंकि लिखा है परोपदेशात जो सम्यक दर्शन होता वो अधिगमज है।
देशना
लब्धि वही कह रहे, शायद ये विवक्षा रही हो, इसलिए कहते
रूप से वो मुख्य कर दें, देशना लब्धि को मुख्य कर दें, मुख्यतया,
बाकी फिर तो पढ़ेगा वो तो है ही, लेकिन गुरु मुख से एक एक लाइन सुन ली, उसके बाद जिंदगी भर नहीं सुनी पढ़त रहो तो भी काम हो गया, लेकिन शुरुआत तो वहां। इसका मतलब है कि आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है वो श्रद्धा के साथ शुरू किया, सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा पूर्वक आपने शुरुआत की, नहीं तो जीवन में अहंकार आए बिना देर नहीं लगती। किसी को बिना गुरु बनाए स्वीकार कर लो भैया। तो हमने तो देखा कि कोई ये नहीं कहता कि हमने इस शास्त्र से पढ़ो जाकेत कि हमने अपने ज्ञान से पढ़ो सब। ये ज्ञान का अहंकार सबसे खतरनाक। जिस समय दूसरा कोई कहता है कि मैंने आपका बहुत अच्छा ज्ञान है, उस समय ये आना चाहिए कि मेरा क्या, अरे वो तो गुरु जी ने नहीं पढ़ाया होता तो क्या होता, ऐसा ध्यान आ जाता। अगर वो शास्त्र मेरे पास नहीं होता तो क्या कर लेते हैं, ऐसा ध्यान आना चाहिए। उस समय ये नहीं आना चाहिए कि हाँ देखो है मेरे पास क्या है। इसलिए कहना पड़ा हो शायद कि वाचना तो गुरु के मुख से ही होगी।
लेकिन गुरु हमेशा उपलब्ध नहीं होते, तो अगर जिनवाणी को गौण रूप से नहीं लें,
देखो जी अपन पहले कह चुके हैं, गुरु पास्ती में पहले कह चुके कि गुरु की फिजिकल प्रेजेंस और एब्सेंस से मतलब नहीं है।
एक बार गुरु की वाणी, गुरु कहीं लिखा हो उसको भी पढ़ के आप वो गुरु बना सकते हैं उसको,
और फिजिकल प्रेजेंस की नहीं है बात। मैं गुरु को स्मरण करता हूँ, मैं साक्षात उन्हीं के मुख से सुन रहा हूँ क्योंकि मैं उनके चरणों में बैठ चुका हूँ पहले। ये जब तक फीलिंग नहीं है उसके भीतर, तब तक वो शास्त्र स्वाध्याय जो है उपयोगी नहीं। देख तो रहे अपन सेल्फ स्टडी वालों को, देख तो रहे क्या हुआ है बताइए, कितनी विनम्रता रह गई, कितनी सापेक्ष कथन की शैली रह गई, कहाँ रह गई, ना विनय रह गई ना सापेक्ष कथन की शैली रह गई। चाहे जैसा जो है पढ़ते हैं, चाहे जैसा जो है उच्चारण करते हैं, उसमें लिखा अज्ञानाद दबी व्रतम नियमिनो वर्तिस सहम चान्य था तस्मिन नर्जित मस्ति प्रतिनिभम चैनो निराकुर्वती। हे भगवान, अज्ञानता पूर्वक मैंने अन्यथा प्ररूपण किया हो या अन्यथा आचरण किया हो उसके लिए क्षमा करना। चारित्र भक्ति में हमें रोज पढ़ना पड़ता है। आपके वचन की विरुद्ध अगर कोई चीज बोल दी हो, वैसे तो मैंने सावधानी रखी है पर फिर भी, या आपने जैसा चाहा था वैसा आचरण ना किया हो, मैंने अपने मनमानी स्वेच्छा से आचरण किया हो, वो भी मेरा मिथ्या। इसी तरह ज्ञान के बाद, तो ये ज्ञान कब आएगा, जब हम गुरु के मुख से उस चीज का खुलासा कर लेंगे। अगर मान लो अपन ने सेल्फ स्टडी भी करी मान लो, और जाकर के कोई चीज अपने को नहीं समझ में आती, तो कोई तो होना चाहिए जिसके पास जाकर के और हम सीखेंगे कि भैया अभी नहीं कहते हम इस बात में, नक्की नहीं करते, अभी तो पहले पूछ लो फिर तय करेंगे। तब तो निर्णय तो जो है हम अपने से जो श्रेष्ठ हैं उनके पास बैठ करके, ये विनम्रता उसके भीतर आ जाती। इसलिए मेरा ये कहना था कि वाचना जो है वो गुरुमुख से, कई बार मैं उस परिभाषा को पढ़ चुका और वो परिभाषा ही उतना ही दी है। वाचना का अर्थ कहीं नहीं लिखा कि पढ़ना, गुरुमुख से उपदेश ग्रहण करना वाचना। उस वाचना के द्वारा जो अर्थ प्रतिभाषित हुआ है उस अर्थ के दृढ़ करने के लिए या उस अर्थ के स्पष्टीकरण के लिए जो स्वाध्याय की प्रक्रिया है वो प्रचना। फिर उसके बाद जो अर्थ हमने समझा है उसको बार बार अंडरस्टैंडिंग विद विजुअलाइजेशन इज अनुपेक्षा। ये अपन ने परिभाषा सीखनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग तो है पर विजुअलाइजेशन, अब उसको जीवन में साक्षात देख रहे हैं, विजुअलाइज भी कर रहे हैं, ये कहलाती अनुप्रेक्षा। निरंतर उसका विचार कर रहे हैं, ये ऐसा मौका आ गया इस मौके पर क्या विचार करना, ये अवसर आ गया इस अवसर पर क्या करना, इस तरह ये अनुप्रेक्षा कहलाएगी रोज रोज। फिर आमनाए जैसा अर्थ समझा है और शब्द समझा है उस सबको यथा योग याद रखना, रिटेंशन जिसको बोलते हैं, अपने मेमोरी में क्लोज कर लिया। फिर उसके बाद समय आने पर कोई ने पूछा तो उसे ठीक ठीक बता देना। इसका नाम धर्म उपदेश है। इसको हम दूसरे ढंग से भी कहते हैं कि अपने जीवन को पहचानना है, अपने स्वभाव को देखना कि मैं कैसा हूं, फिर अपने से पूछना कि क्या भैया हो तो तुम ऐसे, मनो करते तो हो ऐसा, है तो स्वभाव तुम्हारा ऐसा पर करते तो ऐसा हो, ऐसा पूछो अपने से रोज कि ऐसा क्यों करते, तो कारण मिलेगा कि मैं इसलिए करता हूं और उस कारण को दूर करो। और फिर कहते बार बार इस बात का चिंतन करो कि मेरा स्वभाव क्या है, इस बात को याद रखो कि मेरा स्वभाव ये है, और जो अपने स्वभाव से विचलित हो तो अपना कान अपने हाथ से पकड़ो और अपने को उपदेश करो कि ऐसा क्यों करते। ये प्रक्रिया भी है, एक तो बाह्य शास्त्र स्वाध्याय की है, शास्त्र स्वाध्याय के साथ साथ अपने जीवन का अध्ययन करना, अपने ही आत्मा का अध्ययन, वो तो मीडिया है, ये कहलाएगा स्वाध्याय। शास्त्र स्वाध्याय शास्त्र आलंबन है, वास्तव में तो हमें अपने ही परिणामों का अध्ययन करना है, मुख्यता, पर उसमें आलंबन कौन बनेगा? शास्त्र बनेगा, और शास्त्र को पांच प्रक्रियाओं से हम पढ़ सकते हैं, ये पांच प्रक्रियाएं। अब कहते हैं कि संयम, अब अगला श्रावक के लिए संयम आता। संयम के मायने क्या है? इच्छाओं का नियंत्रण, निरोध नहीं है। इच्छाओं का निरोध तो तप है, इच्छाओं का नियंत्रण करने, इच्छाएं तो बहुत है, अब उसमें से किसको प्रायोरिटी देना और किसको दूर हटा देना, ये तो हम कर सकते हैं, ये संयम के। इच्छाएं तो बहुत सारी उठ रही थी, क्या करूं, इसमें से जो वैलिड है, जो की जाने लायक है वही करूं और दूसरी नहीं करूंगा, जिससे मेरे आत्मा का हित होता है वही इच्छा पूरी करूंगा, अनर्गल इच्छाएं पूरी नहीं करूंगा मैं अपने, ये नियंत्रण, ये संयम। और जिन 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 इच्छाओं से मेरा हित होता है उनको तो जीवन भर त्याग कर दूंगा। यम पर विजय प्राप्त करने के लिए जो आत्मनियंत्रण होता है उसे संयम कहते हैं, या जीवन भर जो समीचीन आचरण करने के लिए कोई एक संकल्प लिया जाता है उसे संयम कहते हैं। यम के मायने हैं जीवन पर, जीवन पर्यंत, और सम समीचीन रूपेण, अगर समीचीन रूप से क्रिया करने का जीवन भर का आपने संकल्प कर लिया उसी का नाम संयम है, या यम पर विजय प्राप्त करने के लिए। तो क्या कहेंगे शॉर्ट में, सेल्फ डिटर्मिनेशन, सेल्फ इंट्रोगेशन, ये सब चीजें क्या है, ये सब संयम के अंतर्गत है। मुझे देखना है कि मेरी पांचों इंद्रिय और मन की आशक्ति किस तरफ है, जिस तरफ जितनी आशक्ति है उस चीज का मैं उतने जल्दी नियंत्रण करूं, नहीं तो ये आशक्ति बढ़ती चली जाएगी। अभी निरोध तो नहीं कर सकता, नियंत्रण तो कर सकता हूं। मुझे मीठी चीज बहुत अच्छी लगती है, अच्छी बात है, खाऊंगा तो मीठी चीज छोड़ तो सकता नहीं हूं। और देखा है मैंने कि मैं शक्कर जो है चार चम्मच डालता हूं एक गिलास दूध में, भाई आज तो दो डालूंगा, संयम हो गया। मन तो बहुत कह रहा था कि रोज तो चार डालते, भाई की कैसे दो चम्मच से, भाई आए चाहे नहीं भाई, आज तो दो ही खाऊंगा और शाम के उसमें तो बिल्कुल नहीं डालूंगा, एक ही बार लूंगा और दो चम्मच ही लूंगा। हो गया आपका संयम। दस जोड़ी कपड़े दिन भर में बदलता हूं, क्या करूं, आज तो चार में ही काम चलाऊंगा, बार बार नहीं बदलूंगा, इतने रहो संयम। हर प्रकार से पांचों इंद्री के विषय अपन जानते हैं और मन के विषय हैं, इन सब के लिए एक लिमिट में है, इन सब के लिए नियंत्रित करना,
संकल्प बार बार लेना पड़ेगा,
संकल्प तो तुरंत लेना पड़ेगा। एक होता है जीवन पर्यंत, एक होता है टाइम पीरियड के लिए, जिसे अपन ने पढ़ा था ना यम और नियम, तो नियम में तो ड्यूरेशन है, टाइम पीरियड है पर्टिकुलर, और यम में तो जीवन पर्यंत। तो कुछ चीजें जो हमने देखी कि इनकी हमें आवश्यकता नहीं, यकीन के माध्यम से बड़ा विकार उत्पन्न होता है, उनका तो जीवन भर का त्याग, सो उससे निश्चिंत हो गए। बहुत विकल्पकारी चीज पहले छोड़ो चाहिए, अपन लोग जो है ये नहीं कर पाते, बहुत विकल्पकारी चीज पहले, ये बहुत विकल्प करती है, इसको जीवन भर का त्याग, ताकि उसके माध्यम से होने वाला विकल्प तो मिट जाए, फिर जो छोटी छोटी चीजें हैं उनको जो है धीरे धीरे एक दिन के लिए, कहते एक दिन तो बहुत हो गया, एक घंटे के लिए, आधे घंटे, दस मिनट, पांच मिनट के लिए छोड़ता हूं, कठिन नहीं है। संयम जो है, संयम का मतलब यह है कि आत्म जागृति, मैं अपने परिणामों के प्रति जागृत होना चाहता हूं, इसलिए जैसे ही मेरे परिणामों में कलुषता आती है मैं उन सब चीजों का प्रत्याख्यान करता हूं, मैं उन सब चीजों का उतनी देर के लिए त्याग करता हूं, ये संयम है। सुबह से शाम तक अगर व्यक्ति जागृत रहे तो ऐसा संयम ले सकता है। हमने एक दिन उदाहरण दिया था कि आप मंदिर में आए हैं, आधा घंटे मंदिर में रहना है, भाई भोजन इत्यादि तो करना नहीं है, मेरा त्याग, लेकिन ये बिना त्याग जो है बिना संयम के नहीं होता, इसलिए संयम पहले रखा और तप रखा, फिर उसके बाद त्याग,
तो उसके लिए भी संकल्प लेना पड़ेगा,
संकल्प तुरंत,
अगर संकल्प नहीं लिया फिर
नहीं लिया तो सवेरे से शाम तक भिखारी को कछु नहीं मिलो, मनो को उपास थोड़ी का, देखो संकल्प नहीं, उसका इतना ही फर्क है। अगर हमने सुबह से शाम तक संकल्प कर लिया होता कि मिले चाहे नहीं मिले मुझे तो लेने ही नहीं है, नहीं नहीं मिलने पर ये कह देना कि मैंने लिया कहां है, संकल्प नहीं लिया, रात में मैं नहीं खाता तो भैया नियम ले लो, नियम नहीं ले सकते, इसका मतलब है कभी ना कभी रात में खाने का मन तो है, अंदर अनकॉन्शियस में कोई ना कोई बात पड़ी है, नहीं या तो सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं। आजकल लोग सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने की बात करते हैं, हम कहते दूसरा नाम है संयम का, सेल्फ कॉन्फिडेंस। संयम मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं अपने ऊपर नियंत्रण कर सकता हूँ, इसका मतलब है कि मैं संयम ले सकता हूँ।
तो संकल्प महाराज जी गुरु से लेना है कि खुद स्वयं भी ले सकते हैं?
देखो फिर वही बात आई, फिजिकल
नहीं ठीक,
हमने याद
साक्षी करके दे दिया,
जो मोक्ष मार्ग पर चल रहे हैं उनको प्रणाम। परम गुरु तो अनंत भगवान है और उनके बताए मार्ग पर चलने वाले और भी गुरु हैं, और मुख्य तो वो कहलाता जिसके चरणों में हमने जीवन की शुरुआत करी वो गुरु। बहुत सारे आचार्य हैं लेकिन उसमें से एक गुरु कहलाएगा जिसके प्रति हम समर्पित हैं। अब वो फिजिकली हमारे सामने हो या नहीं हो, हम तो जब भी जो करेंगे संकल्प उसकी साक्षी पूर्वक, उसकी परोक्ष साक्षी, याद कर लिया हमें से। अब हमको उपवास लेना पड़ता तो हम ऐसे थोड़ी लेते अपने मन से, भगवान के सम्मुख जाएंगे और भगवान तो हो जाएंगे गायब और आचार्य श्री सामने, महाराज जी कल का प्रत्याख्यान चाहता हूँ आपकी अनुमति हो तो, और अनुमति अपने ही आप ले लेने अपन को, मगर इतना तो भाव करना पड़ेगा कि मैं आपकी अनुमति चाहता हूँ, मेरे अंदर ऐसा अहंकार नहीं है कि मैं कर सकता हूँ, आपकी कृपा के बिना नहीं कर सकता, ये डिवोशन है, ये भाषा ही वैसी है। हालांकि सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि मैं कर लूंगा, तभी तो जाकर के निवेदन कर रहे हैं, पर ऐसा ना हो कि ये सेल्फ कॉन्फिडेंस कल के दिन अहंकार में बदल जाए, इसलिए। और कुछ नहीं, परिणामों की संभाल के लिए है, इस उपस्थिति महसूस होना चाहिए, मेरा मेरा अपना सोच लगता
है। इस भाषा को हर कोई समझ भी नहीं सकता,
आप बताइए, लेकिन समझना चाहिए धीरे धीरे, जो है कोशिश
करेगा, अहंकार नहीं आना चाहिए कि मेरे अंदर ले सकती है कि मैं ये सब कर सकता हूँ, अपने
मैं पांच उपवास कर सकता हूँ, नहीं पांच उपवास कर लिए।
अगर अगर आचार्य श्री के पास में है, आचार्य श्री के पास में अगर उनके पास जाकर के कोई कहे कि मैं इतने उपवास करता हूँ, जैसा करना वैसा कर लो, कर लो, मैं करना चाहता हूँ, आपकी आज्ञा हो तो। हाँ ठीक, एक कर लो फिर कल बताऊँ, ठीक, और आप पहुँच गया कर करके, पांच करूंगा मैं, तो तुम्हें जैसा करना वैसे कर लो, हमें क्या दिक्कत है, पांच कर लो, हमारा क्या जाता है उससे, लेकिन हमारी प्रेजेंस की आवश्यकता नहीं तुम्हें, तो अपने आप सक्षम हो गए कर लो आप, यह अहंकार शुरू। इसलिए संयम में जिस क्षण भी हम जैसे यहाँ आए, हम बहुत आसान तरीका बताते, जैसे अपन भीतर आए इस कमरे में बैठे हैं, अपने को कुछ नहीं करना, वहीं से मन में स्मरण किया कि भाई हम तो जो है एक घंटे महाराज के पास बैठे हैं, मंदिर में बैठे हैं, अब हमारे सब प्रकार की परिग्रह का त्याग और भोजन वोजन का सबका त्याग, क्या है क्या करना, अगर उस एक घंटे में आयु कर्म का बंद हो गया तो ध्यान रखना देवायु के बिना कुछ नहीं बंधे, क्योंकि त्याग है। स्वभाव मार्दवम चा सम्यक्तम चा तो है ही, सम्यक दर्शन हो गए तो देवायु के अलावा कुछ नहीं बनता, लेकिन अगर स्वभाव मृदुता है और बाल तब भी है देवांशी, अगर मिथ्यात्व के साथ भी व्रत नियम संयम का संकल्प है तब भी देवायु बंधेगी और नहीं बंधेगी व्रती। मैं इसलिए अपेक्षा से कह रहा हूं कि अपन को नहीं मालूम कि अपने सम्यक दर्शन है कि नहीं, अपन चरणानियोग के अनुसार कह रहे हैं कि सच्चे देवगुरु अष्टाध्यायी की श्रद्धा है, उनकी श्रद्धा से उनको याद किया और संकल्प कर लिया, ऐसा संयम रोज, ये क्या ये कौन ले सकेगा, जो जागरूक होगा वो ले सकेगा, और जागरूक नहीं है तो दिन भर जो है कैसे बीत गया पूरा, शाम को पता लगती कि आज क्या क्या कर लिया, सब जो होता गया सो करते चले गए, ख्याल ही नहीं क्या क्या किया, और अगर थोड़े अलर्ट हो जाए तो सुबह से शाम तक तब सब मालूम है कि क्या क्या हुआ, मेरे परिणामों में कहां विकलता आई, कहां पर मैंने संभाल लिया उसको, और कैसे मुझे अपने परिणाम संभालना चाहिए आगे कल के लिए, कहां चूक गया था मैं आज, कल और संभालूंगा, तब व्रती फिर देखो आप कितना मजा आए, जीवन ही बदल जाएगा पूरा।
जो महाराज जी इंद्रिय ज्ञान का जो पक्ष है उससे कैसे, जैसे इंद्रिय का भोग पक्ष तो हम बहुत जल्दी समझ में आ गए, वे इंद्रिय के भोगों पर विजय प्राप्त करना चाहिए, लेकिन इंद्रियों से जो ज्ञान येयों को जान रहा है, इंद्रिय ज्ञान वर्तमान में है, उससे भी क्या संयम लेना है, इंद्रियों का अगेय पक्ष
नहीं, गे हे उपादे, तीन शब्द समझ लें अपन ने पहले भी शायद समझे हैं ना। हे वो है जो कि छोड़ने योग्य है, उपादे वो है जो ग्रहण करने योग्य, और गे कौन सा है जो जानने में आता है। जानने रूप विकल्प भी विकल्प है, लेकिन जानने के बाद जो राग द्वेष है वो विकल्प ठीक नहीं है। साधु के हाथ में भी पांचों इंद्रियों के विषय आ रहे हैं। मीठा पदार्थ आया तो कहते हैं कि मीठा मालूम पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, कहते पड़ेगा, मीठा है तो मीठा मालूम पड़ेगा। इंद्री तो अपना काम करेगी, रसना इंद्री कहेगी मीठा है, अब भीतर बैठा मन कहेगा कि बहुत अच्छा है और मिले तो
ये
हो गया, और कितना अच्छा मिला, हर्ष हो गया, कितने अच्छे लोग हैं, इतनी अच्छी चीज देते हैं, ले लो महाराज बहुत अच्छी है, स्वादिष्ट है। उस समय परिणामों की संभाल है कि स्वादिष्ट तो है लेकिन मुझे इसमें राग नहीं करना, मुझे हर्ष विषाद नहीं करना। कहते जो चीज जैसी है उसका सोने को सोना तो कहेंगे, लेकिन सोना कीमती है ये कीमत नहीं डालेंगे, सोना सोना है, कीमत क्यों डाल रहे हैं आप उसमें, ये विकल्प ये नहीं करना। इंद्री के विषयों में हम जो अब आशक्त हो जाते हैं
वो नहीं करेंगे, वो तो इंद्रिय जय
गे तो बनेंगे
हाँ, लेकिन ये है कि इंद्रियों के माध्यम से रूप रस गंध वर्ण और शब्द जानने
सब आएंगे,
अतिंद्रिय आत्मा जानने में तो नहीं आ रहा।
रूप रस गंध स्पर्श में राग द्वेष नहीं है, अगर
ये इंद्रिय जय हो गया, बस पांच इंद्रियों पे
यही, इसी का नाम इंद्रिय के विषयों से विमुख होना है, इतना ही लगाना है।
लेकिन अगर आत्मा को जानना हो तो इंद्रिय ज्ञान को भी क्या हे मानना पड़ेगा,
इंद्रिय के विषयों को जानने की जो प्रवृत्ति है बुद्धि पूर्वक, मैं ये जानूं कहते राग है,
लेकिन जब
और जानने में आ जाए तो राग, ऐसा है उसका
जो मति ज्ञान है वो तो पांच इंद्रियों मन के माध्यम से ही है,
इनकी इनकी बुद्धि में न चढ़ेंगे बात,
अच्छा
हाँ, इसलिए इनके 15-20 मिनट हैं जी, अपन तो बर्बाद अपन जो है क्या चर्चा कर रहे थे, क्योंकि चर्चा में तो संयम क्या है, संयम के मायने हैं जिससे हम मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं, और संयम के मायने हैं जिसमें कि हम जीवन पर्यंत के लिए अपने विकारों पर विजय प्राप्त करने के लिए संकल्पित होते हैं। शॉर्ट में कहें कि आत्मनियंत्रण की प्रक्रिया या सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने की प्रक्रिया का नाम संयम है। मैं रोज रोज जो है अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए छोटे छोटे संकल्प लूं और अपने ऊपर नियंत्रण करूं, ये संयम है। संयम मन की इच्छाओं पर भी होता है और इंद्रियों के विषयों पर भी होता है, उनकी हम लिमिट करेंगे, जिनसे ज्यादा आसक्ति है उनकी आसक्ति कम करेंगे, और जो चीजें हमारे उपयोग में नहीं आती हैं उनको भी हम छोड़ देंगे, इतना जो है संयम हो गया। और इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ो तो तप हो जाएगा, त्याग की चर्चा फिर करेंगे। तप क्या है, कहते इंद्रिय का निरोध, इच्छाओं का निरोध। निरोध के मायने क्या, तो अभी जैसे सोचा था कि दूध में 4 चम्मच डालता हूं सो 2 डालूंगा, अब क्या सोचा, आज तो मैं 70 ले गई नहीं, रस परित्याग नाम का तप हो गया, आज तो जो है मैं 4 प्रकार की चीजें रोज खाता था, आज तो 2 ही लेऊंगा, वृत्ति परिसंख्यान नाम का तप हो गया। इस प्रकार से या कि 4 प्रकार के भोजन का त्याग कर दूंगा, अनशन नाम का तप हो गया, या कि अपने भूख से 1 ग्रास कम लेऊंगा या सिर्फ 1 ही ग्रास लेऊंगा, तो ये हो गया उदर तप हो गया, ये बाह्य तप है। या कि मैं आज इतने कायोत्सर्ग करूंगा, उतनी देर के लिए शरीर से ममत्व छोड़ूंगा, ये कायोत्सर्ग नाम का तप हो गया, कायक्लेश नाम का तप, उसको कायोत्सर्ग कहो कायक्लेश कहो, शरीर को अतिरिक्त जो है मैं तपस्या में डालना, ये कायक्लेश हो गया। तपते इति तपः, जिससे कि कर्म ढीले हो गए और आत्मा तपे, उसको कहते तप। शरीर तपाने का मतलब नहीं है शरीर को क्लेश में डालने का नहीं, शरीर पे तो वैसे ही क्लेश है, शरीर तो क्लेशकारी है ही, लेकिन उसके क्लेश को शांति पूर्वक सहन करने की कितनी क्षमता है उतना करके देख लिया कि देखो इतनी क्षमता तो है मेरी, वही तप कहलाए। या सीधी परिभाषा, इच्छाओं का निरोध करने का नाम तप है। जो इच्छा उठी उसको आधा पूरा किया तो संयम है, थोड़ा बहुत पूरा किया, कहते आज उसको पूरा करेंगे नहीं, ये हो गया। और अंतरंग में क्या आएगा, अंतरंग तब भी कीमती है। क्या कहते हैं, प्रायश्चित विनय वैयाव्रत स्वाध्याय ध्यान और विसर्ग। तो प्रायश्चित कोई गलती हो जावे तो कन्फेस करो, उसका कोई दंड होता होएगा उसके शुद्धिकरण की, दंड मतलब शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया होगी उसे सहज संगीकार करो, शहर संगीकार अंतरंग तप है। फिर विनय, विनय चार पांच प्रकार की होती है, अपन ने ये शायद पढ़ा नहीं उस डिटेल में, विनय पांच प्रकार की होती है। जल्दी तो नहीं कर रहे हैं अपन, इतना तो समझ में आएगा, रिपीट कर लेंगे कल फिर। विनय पांच प्रकार की होती, ज्ञान की विनय, दर्शन की विनय, चारित्र की विनय, तप की विनय और उपचार विनय। हाँ, सम्यक दृष्टि और सम्यक दर्शन दोनों की विनय, सम्यक ज्ञानी है और ज्ञान है दोनों की विनय, सम्यक चारित्री है और चारित्र है इनकी विनय करेंगे, तपस्वी है या तप है बारह प्रकार के सबकी विनय करेंगे। सबके प्रति विनय मतलब हमारा उनके प्रति रुझान है, रुचि है हमारी, ये आदर है उनके प्रति। और उपचार विनय, उपचार विनय मतलब अपने से बड़े जो तपस्वी हैं ज्ञानी हैं उनके आने पर उठ करके खड़े होना, आगे आगे चलना, उनके अनुकूल प्रवृत्ति करना, ये सब जो है, या हाथ जोड़ना, माथा टेकना, ये सब जो है बाह्य उपचार विनय कहलाती। ये सब भी बिना अंतरंग के नहीं होती, इसलिए विनय जो है वो अंतरंग तम है। फिर प्रायश्चित विनय भैयाव्रत, भैयाव्रत का अर्थ अपन ने समझा ही था कि सच्चे देवगुरु शास्त्र वो तीनों के लिए आ जाएगी। सच्चे देवगुरु शास्त्र तीनों की भैयाव्रत्ति है। भगवान की भैयाव्रत्ति क्या है, पांव थोड़ी दबाना, भगवान की पूजा करना, उनके गुणों का गान करना, यही उनकी भैयाव्रत्ति है। और शास्त्र की भैयाव्रत्ति क्या है, उसको वाचना है, उसका स्वाध्याय करना, उसकी भैयाव्रत्ति है। और गुरु की भैयाव्रत्ति क्या है, कोई उन पर आपत्ति आ गई, व्यापत्ति विपनोदा पदियो संवाहनम चगुणरागात भैयाव्रत्यम शिक्षा व्रतानी चत्वारी शिष्टानी, ऐसी परिभाषा आई है कि व्यापत्ति व्यपनोदा, उन पर कोई आपत्ति आ जावे तो उसके दूर करने का उपाय जैसे हो वैसे उपाय करना, लेकिन अहिंसक तरीके से करना और उनके अनुकूल प्रवृत्ति करना, ये उनकी भैयावृत्ति हो गई। क्यों ऐसा कर रहे हैं, ताकि उनके गुणों गुणानुराग पूर्वक करेंगे, किसी स्वार्थवश नहीं करेंगे, उनके सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से हमें अनुराग है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अल्टीमेटली व्यक्ति ना होकर के उसके व्यक्तित्व गुणों की आ जाएगी, व्यक्ति विशेष तो है ही लेकिन उसके पीछे जो गुण है उनके अनुराग की वजह से कर रहे हैं। तो ये भैयावृत्ति नाम का, ये भी अंतरंग तप है, बाही में दिखाई तो नहीं पड़ेंगे, ना इनमें किसी बाही के आलंबन की आवश्यकता, अंतरंग भावों की मुख्य है, बाकी गौण रहेंगे। भैयावृत्ति में हर समय थोड़ी कोई उपस्थित रहेगा, लेकिन जैसे बनेगा वैसे।
ये पैर वगैरह दबाना भैयावृत्ति क्यों है, पैर वगैरह दबाना इसको भैयावृत्ति किस रूप में माना,
उनके पैरों को दबाना गुण अनुराग बस, गुणानुराग है और कोई इंटेंशन नहीं, उनको पाँव में दर्द आए उनने कछु उनको दर्द हम पाँव दबाए से दूर करें दे, मानो हमें गुणों का अनुराग है सो हम जाकर के निकट बैठ रहे हैं और पैर दबा रहे, बैठे बैठे क्या करेंगे पैर दबा रहे।
तो अंतरंग कैसे हो गया,
अंतरंग में तो भैया बहुत
श्रावक हुआ,
बहुत मुश्किल है पैर दबाना और पैर छूना जब तक भीतर परिणाम नहीं हो, या तो पांव दबाए जाए बटरिंग के लाने या फिर गुणों की प्राप्ति हो, दो ही किलाने इनसे काम बन जैसे दबाओ संजा को जाके, हाथ पैर, हाथ पैर दबाने का अर्थ क्या है, यही तो होता ही है हमारे स्वार्थ की। और इसे इधर परमार्थ है, कहते हनुमान को वज्र का शरीर मिला, कारण बताओ, मुनियों की भैयावृत्ति की है, सेवा करी है, उसका परिणाम है कि वज्र का शरीर। और ये सड़ा शरीर इसलिए मिला क्योंकि किसी के पैर नहीं दबाए, तो आपके पैर मजबूती कहाँ से आए, ये है उसका कारण। अगर थोड़ा सा अपन इसको विचार करें, शांति सागर जी महाराज कितने बलिष्ठ थे, 10,000 उपवास किए, कभी देखो बचपन उठा करके 9 बरस की उम्र में दो दो महाराज जी को इस तरफ लेके दूध गंगा वेद गंगा पार करवाते थे, दो दो महाराज जी के लिए
बैल से लड़े
हुए। ये शक्ति कहाँ से मिली, हाँ ऐसा उनकी कभी वो चार चक्रवर्ती पढ़िएगा उसमें, तब मालूम पड़ता कि हाँ ये सब चीजें भी बाह्य हैं। बाह्य शक्ति प्राप्त करने के लिए अंतरंग के परिणामों की कैसी निर्मलता चाहिए कि पैर दबाओ तब मिलेगा। तो इसलिए पदयोह दोनों पैरों को दबाना, ये भी भैयावृत्ति में शामिल, रत्नगण शाप का चार समंत प्रति स्वामी लिख रहे हैं गुण रागा, लेकिन ये लिखा गुण रागा, कोई भी देखो अपन थोड़ा भी हम लोग तो
प्रति आदर सत्कार है, इसीलिए
हम आपको एक उदाहरण सुनाते हैं। देखो बहुत आसान समझ में आ जाएगा कि क्यों पेड़ दबाना, आपको भी क्लियर हो जाएगा। हम लोगों को पहले प्रक्रिया थी संघ में, आज भी है, अब थोड़ी है, पहले बहुत अधिक थी, कि शाम को सब एक दूसरे के पैर दबाएंगे, सिर दबाएंगे। श्रावक तो करें सो करें बाद में, पहले आपस में एक साधु दूसरे की करें। अब मान लो दिन भर में, हम अंदर की बात बताते, दिन भर में अगर कोई काय भाव किसी के प्रति आ भी गया होगा, दिन भर संगे रहो तो हो जाता कुछ ना, ऊंची नीची विचारों में एकता नहीं होने से, मान लो कोई आ भी गया विचार और संजा को जाकर चुपचाप अंधेरे में और सिर दबाया है, पैर दबाया है, वही समय सब साफ होगा सवेरे से फिर जम के तक, अरे वो तो पैर दबा के चला गया हमारी, अब उसके मन में कुछ नहीं है तो अपने मन में काय को रख। कैसा उपाय है इस, ये अंतरंग है। अब इसके बाद देखो भैया, अब पैर दबा दबा भी कोई को अहंकार ने टूटे तो जब जी हमने इसमें नहीं किया, लेकिन निर्मल सुलझने के लिए वही है कि अब क्या करें, साधु के पास में कैसे पहुंचूं, उनके निकट कैसे जाऊं। तो भाई कोई एक समय निर्धारित कर लिया कि मैं निकट आऊंगा, थोड़े पैर दबा लूंगा, और कई कई लोग जो है अकेले पैर दबाते दबाते कैसे गदगद होकर रो पड़ते हैं, जी आप देखो उसमें कितनी कर्मों की निद्रा होती होगी, हाथ पे एक ग्रास धरो तो पंडित कैलाश चंद ने, और मुंह पकड़ के बाहर निकल गए थे रो, क्योंकि आंसू ना आ जाए, वे पंडित कैलाश चंद जो मुनियों का विरोध करते थे, और जब एक ग्रास रखा था उनने तो ऐसे गदगद हो गए थे, उनके हाथ कप गए, आंसू की धारा बह गई, बाहर निकल गए, हमारे सामने की बात है सनस्सी में। और फिर बाहर लोगों से कहते थे कि पूरी जिंदगी निकल गई, हमने तो व्यर्थ गंवा दिया, हम तो इस प्रक्रिया को झूठा मानते थे, अरे ये तो प्रक्रिया ऐसी है, जो भोजन हम करत सो जो जे करत है, मनो इनको एक ग्रास देने में क्यों ऐसे परिणामों की निर्मलता हो गई, ये माध्यम। अब न हो गए किसी को सो भैया वो अलग बात, लेकिन होती है इससे, ये सब हमारे गुण का अनुराग है ना, गुणानुराग वश है और कुछ नहीं उसमें, उद्देश्य सिर्फ इतना सा, नहीं तो उनको हमें क्या पैर दबवाना। हमने आचार्य जी से कई बार कहा कि बंद कर दें, के लिए बंद करने की एक मिनट लगना है कि भैया नहीं करवा रहे, अपनों काम कर रहे, मगर वो जो 25 लोगों का धर्म ध्यान हो रहा है वो तो रुक गया, वो उसी माध्यम से, उनको और कुछ नहीं आता, वे पैर ही दबाते, जो ही कर लो भैया इतना ही कर
लो।
अब हम पहुंच, हम जब संघ, जब हम संघ में जाते हैं तो हम चाहते कि आचार्य सीधे हमसे पैर दबवाएं, क्योंकि और कोई दबवाता नहीं, सब हमसे छोटे महाराज जी हैं, सभी कहते रहे हम आपसे नहीं दबवाते। समय सागर जी जो है कभी कभार हम उनके पांव दबें तो भी हम और सिर दबें तुरंत। हमने आज तक देखा उनको कि समय सागर बड़े हमसे, योग सागर जी थोड़ी बहुत करवा लेते, लेकिन करवा है मनो क्या देखे वह लेके देते, हम भी आपकी करेंगे, आप हमसे करवाना पड़ेगी तो हम आपसे करवा, दो ही महाराज बड़े हैं हमसे, और बाकी अब हम किसकी करें भैया वृत्ति, तो हमें तो फिर जो ही सड़ी मिल है सड़ो हम तो यही जाना था, तो हम आचार्य श्री की करते, आचार्य श्री की भैया वृत्ति। तो हमने आचार्य श्री एक दिन ऐसे ही कोई बैठी थी, मैं इसमें निमित्त हूं, अगर मुझे भैया वृत्ति करवाने की भावना हो जाए तो गड़बड़, मेरी करवाने की भावना नहीं, पर ये अपने मुझे निमित्त बना के अपनी करते, इनकी भैया वृत्ति करवे की भावना नष्ट हो जावे तो इनका है, और मेरी करवाने की हो जाए तो मेरा है। देखो इनकी भावना है और मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है, से दोनों का काम चल रहा
है। संस्कार भी डलता है, आज आपको तकलीफ नहीं है जो महाराज जी की कर रहे हैं, पर कोई ऐसे महाराज जी जाए जिन्हें तकलीफ हो, कोई भैया वृत्ति करने वाले की संस्कार ही नहीं हो, तो
आते गांव में छह कांटे थे महाराज जी के विद्याचार्य जी, वो बताए आपको, बोले मैं कांटे निकाल के जाऊंगा, मैं रोता जाता था, महाराज जी बोलते तुम क्यों रो रहे, बोले महाराज जी मैं कांटे निकाल रहा हूँ ना, धन्यवाद देते ना कुछ बोलते, और उल्टा मेरे बोलते क्यों रो रहे, बोले शरीर है शरीर से मोह करो मत, बोले मेरे को आंसू आ गए कांटे निकालने,
संदेश तो मिलता, संदेश तो मिलता, तो ये सब चीजें उसी दृष्टि से है। कितने तक हो गए प्रायश्चित, विनय भैया वृत्ति, स्वाध्याय, स्वाध्याय भी अपन समझ चुके डिटेल में, वो भी तप हो जाता है, किन क्षणों में तप हो जाता है, जब हमारे अंतर की भावना, तो वो तप हो गया इस तरह से। और ध्यान, ध्यान के मतलब श्रावक कितना करेगा, धर्म ध्यान करेगा, धर्म ध्यान की परिभाषा अपन ध्यान के समय समझ चुके हैं कि वो ऐसे बैठ करके करने वाला ध्यान अकेला ध्यान नहीं है, जो 24 घंटे अपन आध्यान रौद्र ध्यान से बच करके और जो धर्म ध्यान करते वो धर्म ध्यान, तो वो धर्म ध्यान हो जाएगा श्रावक के लिए तो इतना ही होगा। और विसर्ग थोड़ी समय के लिए शरीर से ममत्व छोड़ देना, पंच नमस्कार का उच्चारण कर रहे हैं, नौ बार कर रहे हैं, उतनी देर के लिए शरीर से ममत्व छोड़ दिया, वो सब विसर्ग नाम का, ये तब भी श्रावक कर सकता है क्योंकि अपन श्रावक की दृष्टि से। तो इतना संयम तप त्याग के बारे में।
ग्यारह अक्टूबर का प्रवचन शुरू होता है,
उसमें से अपन ने देव पूजा कर लिया था, गुरु पास्ती का स्वरूप समझ लिया, शास्त्र स्वाध्याय समझ लिया, संयम और तप, ये दो चीजें भी कल अपन ने समझ ली थी। संयम और तप में शॉर्ट में याद रखने वाली चीज है, आत्म नियंत्रण का नाम है संयम और इंद्रिय के इच्छाओं के निरोध का नाम है तप। बहुत आसान सी परिभाषा है। त्याग जो है दो तरह का होता है, एक दान रूप में होता है और एक त्याग रूप में ही होता है। एक त्याग जिससे कि पर के उपकार की कोई अपेक्षा नहीं है वो त्याग त्याग कहलाता है, त्याग धर्म कहलाता। और एक त्याग ऐसा भी है जिसमें पर के उपकार की अपेक्षा है, उसको दान कहते हैं। दान और त्याग में इतना ही फर्क है कि त्याग में हम चीजों को छोड़ देते हैं, हम ये नहीं देखते हैं कि वो चीज किसी के काम आएगी या नहीं आएगी। और दान में तो हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि चीज त्यागना तो है लेकिन दूसरे के काम आती है तो बहुत। अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम, दूसरे के और स्व के अनुग्रह के लिए जो चीज त्यागी जाती है उसे दान कहते हैं, और जो हमारे जीवन में ही हमने जानी है उसको छोड़ देने का नाम त्याग है। इतनी त्याग और दान के बारे में। अब श्रावक के लिए त्याग जो है वो दोनों तरह का है, साधु के लिए भी दोनों तरह का, पर दोनों के दान में और त्याग में फर्क है। साधु जो त्याग करता है वो अपने समस्त वाही और अंतरंग परिग्रहों का त्याग करता है, और दान देता है तो रत्नत्रय का दान देता है, सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र देना, ये दान देगा, ये साधु का दान है और त्याग है। गृहस्थ क्या करेगा, जो उसके जीवन में अनावश्यक चीजें हैं उनका पहले त्याग करेगा, अनावश्यक का, जो आवश्यक ही नहीं है भाई उन चीजों को तो छोड़ो, उनका तो त्याग करो। अब जो आवश्यक हैं उसमें भी लिमिट करेगा, और जब अपनी आवश्यकता से अधिक हो जाती हैं तब उनको दूसरे के उपकार की भावना से देगा, ये हो गया उसका दान। बहुत आसान सी दान जो है। अब विशेष रूप से अपन देखें तो श्रावक के दान की चर्चा अपने को करनी है क्योंकि उसका त्याग जो है दान रूप ही है अधिकांश। इसको ऐसे भी सब समझ सकते हैं जैसे सांप को कैंचुली बाधक बनती है तो उसे सहज रूप से छोड़ देता है, वो दूसरे के काम आवे चाहे नहीं आवे इसकी उसको फिक्र नहीं है। इसी तरह से जिस और दूसरी तरह उदाहरण लें कि जैसे हमारे घर में कचरा इकट्ठा हो गया, अब हम किसी से पूछने थोड़ी जाते कि क्या भैया जो फेंक देवे, या कोई को दिखा के फेंकते कि हमने इतना फेंका, अरे देखने लेवे बल्कि और फेंक के आ जाते कचरा। तो जिस दिन अपने को ये लगने लगता है कि हमारे जीवन के लिए तो ये सारी चीजें कचरे के समान हैं, जब वो कहते ना कि सम्यक दर्शन प्राप्त होता है तो जीरण तण सम लगने लगते विषय भोग तेरस वेरस लागे, जिनमें कल तक रस आता था वे सब नीरस मालूम पड़ने लगे हैं, और जीर्ण तृण के समान संपदा को छोड़ देता। जीर्ण तृण तृण होवे तो फिर भी कामे आवे, मनो जीर्ण तृण है कछु काम को नहीं, ऐसा विचार करके और उसका त्याग कर देते। ये नहीं देखते हैं कि दूसरे के काम आएगा कि नहीं आएगा, ये कहलाएगा त्याग। ग्रस्त भी ऐसा त्याग करे तो करता ही है, पर उसका अधिकांश त्याग जो है वो दान रूप होता। तो फिर डिवाइड कर दिया कि भाई दो प्रकार का दान है, एक लौकिक दान है एक पारमार्थिक दान है, दोनों प्रकार का, क्योंकि श्रावक को तो लौकिक दान भी करना है और पारमार्थिक दान भी करना है। लौकिक दान के तीन भेद करे, पारमार्थिक दान के चार भेद करे। कहते कौन से तीन भेद लौकिक दान के, तो एक कहलाती समदत्ती, एक कहलाती है सर्वदत्ती, और एक कहलाती दयादत्ती या कि करुणा दान। अब समदत्ती क्या कहलाती, कहते अपने समान विचार वाले के लिए अपनी कन्या और अन्य संपत्ति दे करके उससे संबंध स्थापित करना, ये समदत्ती कहलाती है। कहते ना समदी हो गए, धी मतलब बुद्धि, और सम मतलब हम दोनों जन के अब विचार मिल गए, समदी हो गए, समान बुद्धि वाले हो गए, अब हमने अपनी कन्या दे दी पर हमारी परंपरा चल गई, ये इसको कन्यादान भी बोलते, समदत्ती में कन्यादान भी कहलाएगा, पर सामान्य रूप से समदत्ती जो उन्होंने लिखा है महापुराण में समदत्ती का। और सकल दत्ती क्या कहलाती, अपना पुत्र जब योग्य हो जाता है तब अपनी सारी परंपरा और धन संपत्ति उसे सौंप करके जो विदा ले लेते हैं पिता, वो कहलाती सकल दत्ती। और कोई व्यक्ति दीनहीन दुखी है अपंग है उसके लिए आवश्यकता है, मन में करुणा भाव आ गया, दे दिया, ये करुणा दान कहलाता है। ये तीन प्रकार के दान से अपना मोक्ष मार्ग नहीं सकता, इससे तो सामान्य रूप से लोक व्यवहार चलता है। तो ये लोक व्यवहार भी चलाना है श्रावक के लिए, तो ऐसा दान भी करेगा लोक व्यवहार।
करुणादान का दूसरा नाम
दयादत्ती दिया, नाम दयादत्ती दिया है उसको, करुणादान भी कोई कोई आचार्यों ने करुणादान किया इस तरह से। अन्वय दत्ती भी नाम दिया, सर्वदत्ती सकल दत्ती अन्वय दत्ती, ये एक ही प्रकार सब एक ही होंगे इस तरह से। और जो पारमार्थिक दान है वो तो अपन को जानते हैं, अपन चार प्रकार का है, आहार दान औषध दान और अभय दान और ज्ञान दान या कि उपकरण दान। उपकरण दान में थोड़ी ब्रॉडनेस है, ज्ञान के उपकरण भी हैं और संयम के उपकरण भी हैं। जा तो नहीं रहे, तो उसको क्या कहेंगे, उपकरण दान। कौन कौन से दान हो गए, आहार दान, फिर औषध दान, फिर अभय दान और चौथा ज्ञान दान या कि उपकरण दान। समंत भद्र स्वामी ने उपकरण दान दिया, तो उपकरण दान में थोड़ी ब्रॉडनेस, जैसे अब पेन भी दे दिया वो भी उपकरण है, कि कागज दे दिया वो भी उपकरण है इस तरह से साधु के लिए, या जो उसका पात्र। अब इसमें क्या है, पात्र का ध्यान रखना पड़ता। जो परमार्थ भूत दान है, जो परमार्थ भूत दान है उसमें पात्र अपात्र का ध्यान रखना पड़ता है। और जो तीन प्रकार की लौकिक दान है उसमें तो अपन पात्र पात्र का कोई, अब पात्र पात्र की परिभाषा क्या है दान देते समय, तो कहते सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र से जो युक्त है, चरणानि योग वाली परिभाषा लगाना इसमें, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से जो युक्त है ऐसे जो महाव्रती साधु हैं वे उत्तम पात्र हैं। फिर जो अनुव्रती हैं, सम्यक दर्शन के साथ अनुव्रत धारण करने वाले हैं वे मध्यम पात्र हैं, हैं ये सब जो है पात्र हैं। और जो अकेले सम्यक दर्शन से युक्त हैं, व्रत नियम नहीं लिए हैं, वे भी जघन्य पात्र हैं। इन तीनों पात्रों के अलावा जो है वे सब अपात्र हैं। कुपात्र कौन से कहलाते, कहते कि कहलाने को तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से जो अपने बनाए तो वे साधु को हैं, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से रहे थे तो कुपात्र हैं। इतनी ही कुपात्र की परिभाषा दी कि वेश तो साधु का लेकिन गुण एक भी नहीं, तो बाहर से तो आदमी धोखे में है कि है तो साधु लेकिन साधु के योग नहीं है, तो कहते कुपात्र। और अपात्र तो ये है कि जिसने कोई वेश भी नहीं बनाया है और कोई संदेह भी नहीं होता है, तो अपात्र तो इनके अलावा जितने हैं वे सब अपात्र की कोटि में आ गए। इस तरह से पात्र को ही दान देना, अब इसमें ध्यान रखना है कि पात्र को पात्र बुद्धि से दान देना, अगर पात्र को अपात्र मान के या कुपात्र मान के दयापूर्वक दान दोगे तो भी कहते गड़बड़। पात्र को श्रद्धा से दान देना, हाँ इसमें ये नहीं चलेगा करुणापूर्वक, अरे महाराज भूखे हैं आप अपन ने दे तो बोध है देव दया करके बहुत, कहते ऐसा नहीं, दया मत कर देना उनके ऊपर नहीं तो आपका आयत हो जाएगा। श्रद्धा पूर्वक देना, पात्र को पात्र बुद्धि से देना और अपात्र को पात्र बुद्धि से न देना। अपात्र है जान रहे हैं फिर भी नहीं यही ठीक है ये तो पात्र है दे दो, ऐसा नहीं, इससे परमार्थ नहीं सधेगा। इतना भर विवेक अपने को रखने का है इसमें दान में, और कोई बात नहीं। और ध्यान रखना है कि दूसरे का अनुग्रह हुए, अब दांत तो है नहीं है तुम चना दो उसको खाए, पीवे की तो नहीं है, पैसा हो तुम उसको कहो हाथी देता हूं मैं, हाथी को कहां से खुआ है खुद तो खा नहीं पा रहा, ऐसा दान नहीं देना दूसरे को। तो कहते अनुग्रह करने वाला, और अपना अनुग्रह तो स्वयं होगा क्योंकि दूसरे को देने का जो भाव हुआ है उससे अपने पुण्य का अर्जन तो होगा, सो ये तो स्व अनुग्रह है और दूसरे का भी उससे अनुग्रह होगा। इसलिए स्वस्याति सर्वो दानम अनुग्रहार्थम, स्व पर के अनुग्रह के लिए जो दान दिया जाता है, अब इसमें विधि है
माने एक प्रोसीजर है, विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषास तद विशेषा, दो सूत्र हैं ये तत्वार्थ सूत्र के, बहुत इंपॉर्टेंट दान के बारे में। विधि पूर्वक देना जैसी शास्त्र की विधि है, नवदा भक्ति पूर्वक ही देना, श्रद्धा पूर्वक देना। पात्र को दान देते हो, कोई भी चीज देते हो पात्र को, तो विधि पूर्वक देना, नवदा भक्ति। विधि द्रव्य देख करके देना, उनके योग्य है या नहीं है, उनके धर्म ध्यान में सहायक है कि नहीं। आप तो खुआ चाह हलुआ मनो वो पछे और दिन भर तपस्या हो पे कि नहीं हो पे, ऐसा विवेक रखेगा तो द्रव्य कौन सा दे रहे हैं। द्रव्य में बहुत सारी बातें आती हैं, ईमानदारी का द्रव्य देऊं, कोशिश ये करूं कि ईमानदारी का देऊं, शुद्ध द्रव्य देऊं, जितनी मेरी बन सके कोशिश उतना मैं द्रव्य के बारे में। तो विधि द्रव्य दात्री देने वाले के सात गुण होना चाहिए, श्रद्धा भक्ति तुष्टि विवेक विज्ञान अलुब्धता और संतोष या क्षमा, ये सात बातें देने वाले के अंदर होनी चाहिए। अमात्सरी, दूसरे दाता से मात्सरी न करे, करे जी जी देते हैं जी, हमेशा देते रहते हैं, हम तो दे नहीं पाते, कहते ऐसा मात्सरी नहीं करना, और यही चलता है,
और बहुत ज्यादा चलता है,
सबसे ज्यादा वो जो गुण खत्म है सबको, अमात्सरी। दूसरे
देख देख,
हाँ, दूसरे दाता को सहन नहीं कर पाना,
प्रफुल्लित नहीं होंगे उसको देखा,
प्रफुल्लित
तुम तो फुल्ली आई,
दूसरे दाता से मात्सरी नहीं करना, ईर्ष्या नहीं करना, ये दाता का एक गुण है। खैर, तो ये दात्री हो गई, सात गुणों से युक्त विधि द्रव्य दात्री और पात्र। पात्र की चर्चा अपन ने कर ली कि उत्तम पात्र है तो विशेष फल मिलेगा, मध्यम पात्र है तो मध्यम, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, ध्यान रखना कि उत्तम पात्र को तो उत्तम भाव से दियो और जघन्य पात्र को जघन्य भाव से दियो, कहते ऐसा नहीं, उत्तम पात्र को भी उत्तम भाव से और जघन्य को भी उत्तम भाव से, भाव तो अपने उत्तम बना करके देना तभी लाभ हो। बस इतना एक सूत्र है कि विधि द्रव्य दात्री पात्र, ये दान हम जब भी दें परमार्थ पूर्ण दान दें। अब इसमें चारों प्रकार का तपन जानते, आहार की जगह पर आहार देंगे, औषध की जगह पर औषध देंगे, शुद्ध विचार करके देंगे, और अभयदान, अभयदान यही सब तो है जिसने बनाए होंगे। देखो बैठ करके धर्म ध्यान कर रहे, मंदिर सब अभयदान के स्थान है जहाँ बैठ कर धर्म ध्यान अपन करते हैं, लेकिन किसी का उपकार अपन को समझ में नहीं आता मंदिर बनाने वाले का, कि उसने धर्म ध्यान के कैसा स्थान बनाया, ये सब अभयदान। और सबसे हाँ अभयदान है ये, उसने वसती बनाई है, उसमें कमरे अलग से बनाए, मुनि महाराज जी यहाँ पर आकर के रुकेंगे, धर्मशाला वगैरह क्या है, अभयदान ही तो है एक तरह से जितने भी हैं। और अभयदान से सबसे बड़ा ये है कि निश्चिंतता देना, हमारी तरफ से आप निश्चिंत रहो, कोई खतरा नहीं आपके लिए, ये बहुत बड़ी चीज है, हमारी तरफ से आप निर्भर रहो, हम आपके जीवन में कोई बाधा नहीं उत्पन्न करेंगे, ऐसा प्राणी मात्र को देना चाहिए, ये अभयदान है। और उपकरण दान तो है, ज्ञान दान, अपने पास ज्ञान की चार बातें हैं, कोई ने पूछी तो भैया उसको बता दिया, अपने पास शास्त्र है, दूसरा कोई पढ़ना चाहता भैया ले लो शास्त्र दे दिया, और भी जो सामग्री है जिसके योग्य है यथा योग वो सामग्री देना, ये सब उपकरण दान में आ जाता है। इस प्रकार से ये त्याग की बात
को महाराज जी स्पष्ट रूप से दिखाई दी कि चरणाल योग के हिसाब से 28 मूल नहीं है, उसको देना आहार के नहीं,
उसको तो सिर्फ श्रद्धा से प्रणाम करना लिखा है, अभिनय नहीं करना उसकी, लेकिन बाकी क्रियाओं के लिए नहीं लिखा कहीं।
तत्व की रूपणा अगर स्पष्ट विरोध आ रहा है, स्थूल बात कर रहे हैं,
हाँ मोटी मोटी चीज भी समझ में
नहीं अगर आ रहा है तो फिर क्लियर हो गया कि नहीं है सर,
तब फिर जो है स्थितिकरण करने की कोशिश, उपगुहन करेंगे
और स्थिति की और
वो सब बातें हैं। ऐसा अगर दिखने में आए बाहर में ही, तो हम क्या पहले ही देखेंगे कि हम उससे जाके डिस्कशन करेंगे, दोष समझ में आते तो कहते उपगुहन करो और स्थितिकरण करो, अगर अपनी जिद पे आगम में लिखा होने के बाद भी अपनी जिद न छोड़े और आगम के विरुद्ध बात खोई माने और कहे कि नहीं ये तो आगम सम्मत है, तो कहते फिर उससे दूर की दुआ सलाम रखो और कछुआ आवश्यक, जब सुधर जाए स्वगन फिर तैयार, उसकी उपेक्षा भी नहीं कर रहे हैं।
लेकिन उपेक्षा नहीं करने से तो समाज में फिर निरंकुशता है।
उपेक्षा
क्यों लिखते,
उपेक्षा का मतलब क्या हुआ, उपेक्षा कैसी करना, अभिनय नहीं करना, ऐसी भी नहीं।
देश जब बाहर का है, बाहर नन्हे दिगंबर है,
प्रणाम करेंगे
ठीक है, प्रणाम कर लिया, लेकिन जब 28 मूलों में दोष लग रहे हैं, क्लियर है, तत्व की रूपणा बिल्कुल गलत है,
तो हमने कहा ना दूर की दुआ सलाम, बस बाकी कोई संबंध नहीं।
समाज में तो वो रहेगा ना,
समाज में तो
समाज में वो उस तत्व का प्रचार करेगा।
देखो द्रवलिंगी भावलिंगी भगवान के समय में भी विचरण करते थे, अब उसको अपन क्या कर सकते हैं ये बताओ, नहीं हटे का कसा भावी भावलिंगी थी भगवान,
हम कुछ नहीं मानेंगे, हम नहीं देंगे
खत्म
की जिसको देना है,
हमें इससे क्या लेना,
अभिनय नहीं करेंगे
हम, अभिनय नहीं
करेंगे
हमारे विनय नहीं, हमारे विनय नहीं करने, हम अभिनय नहीं करेंगे, पर हम इतना अधिक भी विनय नहीं करेंगे कि उसके पाप का समर्थन हो जाए, हम उसकी उसका समर्थन भी नहीं कर रहे, लेकिन हम अभिनय क्योंकि आपका जिन लिंग है इसलिए आपको प्रणाम, आप लेकिन आप सब कुछ समझा, हमने आपसे चर्चा भी करी फेस टू फेस कि महाराज ऐसा नहीं ऐसा ऐसा नहीं, नहीं भैया ये तो ऐसा ही लिखा, आगम देख लो, नहीं आगम में कुछ भी लिखा हो मैं तो ऐसा ही करूँगा, तब फिर महाराज ठीक है कोई बात नहीं नमस्तु, बस बाहर चले गए, अब इससे और ज्यादा क्या, अपन होते क्या ठीका ले सकते कि हम आपको सुधार हैं, आप सुधरो सुधरन चाहो तो सुधरो, न सुधरो तो नहीं सुधरो, अपन को क्या करना है,
तो खुद ही हुए सामने,
क्योंकि हमें लगता है कि देखो भगवान के समय में द्रवलिंगी भावलिंगी दोनों प्रकार के थे, देखो पार्श्वस्थ मुनि की चर्चा क्यों करी, पांच प्रकार के पार्श्वस्थ मुनि भी होते थे, पुलाक वकुश कुशी निर्ग्रंथ स्नात का निर्ग्रंथ, इनमें भी जो है सब भावलिंगी है पूरे पांचों, और कैसे दोष लगाते हैं, एक मूल गुण को खंडित कर दिया फिर भी जो है भावलिंगी है, कहते मजबूरी में करो है कि जानबूझ के, अब ये देख लेंगे, तो इस चर्चा से मालूम पड़ जाता है कि ये मजबूरी है इनकी या कि ये मान्यता इनकी ऐसी है, अगर मान्यता झूठी है तो भैया फिर अपना कोई सा ऐसा अपने को
टेंशन समझ में आ जाता, अभिप्राय
अभिप्राय देख लेना चाहिए, अभिप्राय उसमें हमने आपसे कितनी बार मैंने पिछली बार भी कहा था और सबसे कहता हूँ कि जिन चरणों में बैठ करके मुझे अपना मोक्ष मार्ग बनाना है मैं पहले देखूं कि वे चरण मोक्ष मार्ग की तरफ जाते कि नहीं जाते,
इस परीक्षा का निषेध नहीं है,
इसका कमांग निषेध किया,
लोग उसको ये कहते हैं कि भाई फिर आपकी श्रद्धा नहीं है,
नहीं श्रद्धा है सो हम तो हाथ तो जोड़ रहे हैं, नमस्तु कर रहा है जिन लिंग है इसलिए नमस्तु, लेकिन और व्यवहार नहीं कर रहे, ऐसे में तो शिथिलता बढ़ती चली जाएगी, तो हमारा शिथिलता का पोषण भी नहीं करना है और हमें अपने धर्म की अभिनय भी नहीं करना, कहती ना धर्मो धार्मिक ही बिना, इसलिए हम अहंकारवश अपने धर्मात्मा की निंदा दूसरे से नहीं कहेंगे, दूसरा अगर कहे हमारे महाराज कितने खराब हो मनो बाहर है कोई कहे कि तुम्हारे महाराज अरे हुई है हमारे महाराज बहुत स्वतंत्र सही सही है, और जबकि भीतर जाना था कि जी गड़बड़ है फिर भी बाहर वाले से तो यही कहेंगे, तो ये भी ध्यान रखना है क्योंकि मेरे धर्म की अभिनय ना हो जाए, क्योंकि वेश तो वही है, इसलिए वेश की वजह से किसी दूसरे से जाके नहीं कहेंगे, दूसरे के सामने जरा भी कतई कि हम नहीं मानते हैं, नहीं हम सब मानते हैं सबको मानते हैं, लेकिन अंतरंग अंतरंग में ठीक है, पर देखो उसमें एक चीज और विचार करना कि उस समय सम्यक दृष्टि अगर होगा तो उसके मन में, मुझे तो यही आता है जब ऐसी बातें सुनता हूँ बहुत, पंडित जी एक 20 प्रश्न दे गए हमारे लाने के, इनके जवाब चाहिए हमें, उसमें यही दिए हैं कि मुनि महाराज ऐसा करते वो ऐसा करते ऐसे दिए, हमारे मन में क्या आया वो हम आपको बताते, तुरंत मन में आया कि देखो इतना सब तो किया घर छोड़ा सब छोड़ा, इसके बाद कहाँ कौन सी बात अटक रही है जो इतना सब होने के बाद भी विषयों सारे पंचेंद्रिय के विषय छोड़े फिर विषयों की तरफ मुड़ गए, अरे कैसा कर्म का उदय है, ऐसा विचार करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, उनका क्या होगा होगा, अपने मन का खराब करो, हम तो ये कहते भी अपना नरक निर्मित कर रहे सो करें, हम क्यों उनका मन अपना मन खराब करें, भैया आप जैसे वैसे अच्छे, लेकिन मन में ये विचार आना चाहिए कि देखो तो सब कुछ तो करा लेकिन कहाँ कमी रह गई, और उसी समय अपने को समा, आचार्य श्री हमेशा कहते कि दूसरे को गिरते देखकर स्वयं को संभाल लेना, उसके गिरने पर हंसी मत उड़ाना, अपने को संभाल सको तो संभाल,
मतलब वो द्वेष का पात्र नहीं है, दया का पात्र,
दया का पात्र,
मतलब उसके प्रति करुणा आना चाहिए, देखो कैसा कर्म का होता है,
कैसा कर्म का होता है इनका कि सब कुछ होते हुए भी जो है और इन्होंने है
समझ में आ रही बात, हाँ अभिनय तो करना ही नहीं है,
अपने तो
नहीं कर सकते,
अभिनय अभिनय उनकी थोड़ी कर रहे, अपने धर्म की कर रहे, अपने धर्म की कर रहे,
नहीं बोलने का।
तो महाराज जी 20-25 मिनट मोक्ष मार्ग के प्रति हम लोगों की क्या आचार्य संहिता हो वो किसी भी स्थिति में, तब तो उसके उस पर थोड़ा सा एक दिन सब
थोड़ा कर रहे हैं
सहयोग नहीं,
हम तो हमसे जब भी पूछोगे तब भी यही बात कहेंगे, ऐसा नहीं है कि हम कोई
स्थिति वो कैसे भी उत्पन्न करेंगे, हम लोगों की आचार संहिता जो है
अच्छा हम लोगों को करता ही है सबको, यही तो बता रहे हैं वही तो चर्चा कर रहे हैं, इतना टाइम काय को देते नहीं, तुम्हारे पास तो बहुत सारा काम है,
समझ
निकलेगी धीरे धीरे,
मालूम होना चाहिए ना कि नहीं।
थोड़ी सी ब्रॉडनेस हो तो मुझे लगता है सब चीजें समझ में आ जाती, और कुछ नहीं है, और जो संकुचित अपना वो हो जाता है तो फिर अपन गलत गलत ही सोचने लगते हर चीज के बारे में, और गलत सोच के अपन अपना ही अहित करते हैं दूसरे का नहीं।
सही है, दूसरे का
हमें तो हम तो ये हमने कई बार कहा कि हमारे सामने सामने भी अगर कोई पाप करता होगा तो हमारे मन में बिल्कुल कभी नहीं आता कि जी कैसा पाप करता, कभी ये इतने वर्ष हो गए कभी ये नहीं आता कोई सामने पाप भी कर रहा है उसका परिणाम वो जाने, अपन अपना मन क्यों खराब करो भैया। वो पाप कर, हाँ वो हमारे पास आकर के पूछता है कि भगवान हमारी तो गलती तो हो गई भैया, सुधार लो, हम तुम्हारी निंदा नहीं करेंगे किसी के बारे में भी, अन्यथा उससे अपना ही अहित होता। मुझे तो शुरू से ये चीज लगती है, बहुत सुनते हम तो इनने वो ऐसा करते वो तुम्हारा जैसा करते वो, भैया अपन को क्या करना, और कोई अच्छी बात करो जिसमें फायदा, उपगुहन करना चाहिए दोष दिखाने के बाद, सम्यक दृष्टि तो उपगुहन करेगा, स्थितिकरण करेगा, विचार करेगा कि क्या करूं, ऐसा ही मैं कभी अपने परिणाम विचलित हो जाऊं तो मुझे भी अपने को स्थितिकरण करना है, दूसरे का तो करना ही, स्वयं का भी, वो आज परिणामों से विचलित हो रहा, हम भी तो हो सकते परिणामों से विचलित, कर्म का ऐसा तीव्र उदय आ जावे कि वेश अकेला रह जाए और भीतर से गुण स्थान जो है आशक्ति बढ़ जाए, तो उस समय किसको कहेंगे। पात्र पात्र की चर्चा में एक बात और आपसे कहें, जैसे लोग कहने लगते ना कि क्या पता महाराज अपन ने उनको दे दा और भी शराब वराब पी ले में तो हाँ भैया ठीक है, इतना विचार कर लो थोड़े बहुत ऐसे आगे नहीं बढ़ियो, आपको लड़का पिया थो शराब तो सब रो पैसा हुई थो तो दे थो, उतने नहीं सोचत कि जो हमारा लड़का शराब पी रहा और ओवन कर रहा हूँ, और उतने उस गरीब आदमी को जिसको हो सकता कि नहीं भी पिए और तुमने अपने पहले मन बना लो कि क्या पता शराब पी लेवे तो, इसलिए इतना विचार ज्यादा नहीं, करुणा पूर्वक दे दिया आप, तुम जो करना हो वो करो, अपन ने अपना मन समान मुख्य इसमें ये, मुझे तो ये ज्यादा
इंटेंशनली मोक्षमार्गी के प्रति नहीं कुछ होता, लेकिन इग्नोरेंस में होता है, नहीं मालूम होता तो भी
होता है
तो कभी समय थोड़ा सा
समय तो इतना ही है
हम लोगों को थोड़ी सी ऊपर क्लियर हो जाएगी।